ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग प्रारंभ करेंगे 18वें श्लोक से, परंतु आवृत्ति 21 और 22 दो श्लोक का। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिन शरणापन्नान त्रैलोक्य दहनाद विषाद त्वमेकः सर्वजगतः ईश्वरो बन्धमोक्षयः तं त्वामर्चन्ति कुशलः प्रपन्नार्ति हरं गुरुम् कल कथा के शेष में यह वर्णन आया था कि जब सुधा उत्पन्न नहीं हुई, अमृत उत्पन्न नहीं हुआ, तो स्वयं भगवान अजित मंथन करने लगे। तो एक बृहद श्लोक में सुखदेव गोस्वामी भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो अब जब भगवान मथने लगे, देवता दानव भी बहुत जोर से समुद्र मंथन कर रहे थे, तो समुद्र से सबसे पहले विष निकला। वैसे 14 रत्न निकले समुद्र मंथन से, तो उसमें विष भी एक रत्न ही में आया है। जिस माने में इसको रत्न कहा जा रहा हो, पर इसको रत्न के अंदर गिना गया है। सबसे पहला पहली वस्तु निकली, निकला विष। तो यहां से वर्णन कर रहे हैं 18वें श्लोक से। निर्मथ्यमानाद उदधेर महाविषम महोल बड़म हाल हलाभ मक्रतः संभ्रांत मीनोन मकरा ही कच्छपात तिमी दीपग्राह तिमिंगला कुला। निर्मथ्य मानात उदधे, जब समुद्र इस प्रकार से बड़े तेज गति से मथा जा रहा था, तो उस समुद्र से महाविषम अग्रतः सबसे पहले महाविष निकला, जिसका नाम है हाल हला। हाल हला इसके तीन नाम हैं, हलाहल कहते हैं, या हाला हाल, या हाल वलम। हाल वल तीन नाम, जो भी इच्छा करे बोलना चाहिए। हलाहल कहने में आसान है। हलाहल जहर निकला अग्रतः सर्वप्रथम। कैसे समुद्र से, जिस समुद्र में मंथन के कारण, मंदराचल के भ्रमर के कारण संभ्रांत मीनोन मकरो ही कच्छपात, उस समुद्र में जितने भी बड़ी बड़ी मछलियां थी, और मछलियां संभ्रांत हो गई, बड़ी बड़ी मछलियां घबरा गई, ये क्या होने लगा इनके घर में। तो कई योजन में पानी उद्वेलित हो रहा था एक बार घुमाने से, वो तो जहां तहां भागे किनारे और सोचने लगे हाय भगवान ये क्या हो गया। तो मछलियां संभ्रांत हो गई, और मकर मगर सब ऊपर आ गए, उत्त मकर, और सांप मकर अहि कच्छप कछुआ सांप और तिमी, तिमी नाम के बड़े बड़े मछली होते हैं, तिमी और द्वीप, द्वीप मतलब हाथी, जल के हाथी, ग्राह और तिमिंगल आदि से भरा हुआ वो समुद्र था, तो ये सब आकुल हो गए, घबरा गए। इतना ध्यान रखना चाहिए कि किसी की कोई क्षति नहीं हुई, क्योंकि भगवान मथ रहे थे। भगवान की शक्ति से ऐसी व्यवस्था थी कि वे लोग लहरों से इधर उधर होते थे, घबराए, लेकिन किसी की जान नहीं गई। बाद में सब व्यवस्थित हो गए किनारे होकर। तो ऐसे घबराए हुए तिमी, द्वीप, ग्राह और तिमिंगल। तिमिंगल कहते हैं जो तिमी को निगल जाए। तिमी का क्या अर्थ है? तिमी 10 योजन का मत से होता है लंबा, और उसको भी जो निगल जाए उसको तिमिंगल कहते हैं। 100 योजन का होता है। बहुत बड़े बड़े जीव जल में रहते हैं, जंगल में उतने बड़े बड़े जीव नहीं रहते हैं या स्थल पर, जितने जल में रहते हैं। भगवान की अद्भुत सृष्टि है, तीनों स्थान में जीवों की सृष्टि किए हैं, जल में, थल में और नभ में। जलचर, थलचर, नभचर। जलचर जीव जो उसे महासमुद्र में रहते थे, दूध में रहते थे, वो सब घबरा गए, और उस समुद्र से महाउल्बणम महाविषम अग्रत अभूत शेष। अभूत है वे पर निर्मथ मानद उदधेर महोल्बणम महाविषम महोल्बणम हल हल्ला हो मग्रत। तो निकला समुद्र से विष और सारे जलचर जीव घबरा गए। बहुत भारी भारी थपेड़ों से, दूध के थपेड़ों से लहरों में वो बह रहे थे। तो विष कैसा था इसका वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी करते हैं। तदुग्र वेगम दिशि दिशि पर्यध विसर्प दुपसर्प पद संयम प्रति भीता प्रजा दो द्रुरंग सेश्वर अरक्षमाणा शरणम सदा शिवम। वहां पर जो भी मत रहे थे उस समय की तात्कालिक प्रजा, उनके लिए कहा जा रहा है। देवता और दानव मत रहे थे, जब उन्होंने देखा महाभयावह विष उत्पन्न हो गया, तो वह विष बड़ा वेगवान था, वेग उसका बहुत था, बहुत तेज गति से चारों तरफ फैलने लगा, चारों तरफ फैल रहा था। उग्र वेग, कैसे देवताओं को और दानवों को पता लगा कि विष है? क्योंकि उसकी हवा आने लगी, तो हवा से उनके शरीर में रोमांच होने लगा, बहुत जलन होने लगी। रोमांच दो प्रकार से होता है, आनंद से और शोक से भी। तो शोक छा गया, जैसे आपने कभी अनुभव किया होगा, अगर अकस्मात कोई सांप दिखाई पड़ जाए तो रोमांच हो जाता है भय के मारे। तो रोमांच होने लगा और शरीर में पसीना छूटने लगा, जलन उत्पन्न हो गई दैत्य और देवों के शरीर में। उग्र वेग, और उसका बहुत भयावह वेग था बढ़ने का। दिशि दिशि उपरी अध, दिशि दिशि, दिशि दिशि का अर्थ है सर्वासु दिक्षु, सभी दिशाओं में, ऊपर नीचे और कोनों में, चारों तरफ वो विष फैलने लगा। दिशि दिशि ऊपरी अध, ऊपर नीचे, विसर्पत, विसर्पत का अर्थ है वो फैलने लगा, और उपसर्पत और ऊपर उठने लगा, और चारों तरफ फैल रहा है, ऊपर ही बढ़ रहा है। और ऐसा विष जो असह्यम अप्रति, जिसको सह पाना कठिन था, मरना निश्चित था उस विष के चपेट में आकर के, और वो फैल रहा था। एक जगह रहता तो कोई बात नहीं, एक सरोवर में या किसी कुंड में बंद हो जाता, ऐसा नहीं था। पूरा समुद्र व्यापी विष था, और जितना दूर में समुद्र था, क्षीर समुद्र, उतने दूर में वो विष उत्पन्न हुआ मथने से और फिर फैलने लगा। असह्यम, उससे फिर जीवन की रक्षा कर पाना कठिन था, उसको सह पाना कठिन था। और अप्रति, अप्रति का अर्थ है अप्रतिम, अद्वितीय विष अथवा प्रतिकार शून्य। कोई संसार में ऐसी दवा नहीं है, कोई औषधि नहीं है, कोई उपाय नहीं है कि उस विष से बचा जा सके। तो असह्यम और अप्रति ऐसा विष चारों तरफ फैलने लगा तो भीता प्रजा, वहां पर समुद्र के आसपास जो प्रजा थी और विशेष करके देवता और दैत्य ये सब डर गए। और दुद्रुव अंग, हे महाराज परीक्षित, हे प्रिय परीक्षित, सब लोग वहां से भागे। वासुकी नाग को वहीं छोड़ करके, मथना सतना सब छोड़ करके, और उनका पैर चला, दुद्रुव करके बहुत तेज गति से भागे। तो उसमें से सबसे पहले भगवान ने ही ये नाटक किया। वो चाहते तो वहीं पर भगवान की शरण ले लेते, तो रक्षा कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने ही एक नाटक किया। अरे भागो भागो, शिव जी बचाएंगे, अब कोई नहीं बचा सकता है। तो भगवान भी थोड़ा भागने का नाटक किया। उनकी बात सुनकर के सब लोग भागे भगवान शिव के पास। ये प्रश्न होता है कि भगवान शिव थे कहां? वो कैलाश में थे, अपने घर में, अपने धाम में, और बैठे थे पार्वती जी के साथ। आगे वर्णन आएगा। मुनियों के हित के लिए भगवान शिव हमेशा तप करते रहते हैं, भोगों में कभी नहीं रहते। उनके घर में कभी रसोई नहीं बनी आज तक। जंगल में, पहाड़ में रहते हैं, कंदमूल फल खा लेते हैं, या कोई लाया भेंट दे दिया खा लिए, नहीं तो चूल्हा नहीं जलता है। तप करते हैं, सिखाते हैं, अपने आचरण करके भगवान सबको सिखाते हैं कि ऐसे संसार में रहना चाहिए। क्यों अपनी आवश्यकता बढ़ा बढ़ा करके लोग मरते हैं? इतने भगवान शिव गृहस्थ हैं। आजकल गृहस्थ होने के कारण लोग बेढंगा संग्रह करते जाते हैं, और संग्रह क्या करते हैं, उस जाल में अपने को फंसा लेते हैं और जीवन दुखी होता जाता है। तो भगवान शिव तप करते हैं। जब देखिए तो बैठे भगवान की बातें कर रहे हैं। ऐसा कभी भी शिव जी को नहीं कोई देखा, कैलाश पहुंचे और शिव जी डाइनिंग टेबल पर खाते हुए पकड़े जाए, कभी नहीं। या उनके पास मोबाइल हो या कुछ भी हो, आजकल के कीड़े मकोड़े सब मोबाइल रखते हैं। लगता है ये मोबाइल से ही संसार को थामे है, नहीं तो सबका साइकिल चला जाएगा। ऐसी दशा होती जा रही है। भगवान शिव जगत के ईश्वर होकर भी संग्रह से बिल्कुल दूर, भक्ति करते रहते हैं, जप करते रहते हैं। स्वयं पार्वती जी, माता जी कहती हैं कि तुम अपनी राम राम दिन राति, सादर जप हुआ नंग आराती। हे कामदेव के शत्रु, आप रात दिन राम राम रटते रहते हैं, ये राम कौन है? पार्वती जी ने पूछा। भगवान कहते हैं वही दशरथ जी के पुत्र राम है, और कौन राम है? बहुत बड़ा उत्तर दिया है, रामायण इसी पर आधारित। तो भगवान शिव कैलाश में थे, लेकिन अब जान बचाने के लिए विष भी फैल रहा था, पर उसके आक्रमण से जान बचाने के लिए बहुत तेज गति से भागे। भागे भागते भागते कैलाश पहुंचे। किसकी शरण में गए? अरक्षमाणा शरणम सदाशिवम। अरक्षमाणा, वहां कोई बचा नहीं रहा था। जो बचाने वाले हैं वो तो स्वयं ही नाटक कर रहे थे, भगवान शिव को जस देना चाहते हैं। यह श्री भगवान का स्वभाव है कि अपने भक्तों को वे जस देते हैं। भगवान शिव को ये जस देना चाहते हैं कि ये विष की ज्वाला से जलते हुए देवताओं और दैत्यों की, सारे जगत की रक्षा की। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जही पान किए, तेही न भजस मतिमंद को कृपाल शंकर सरिस। देवता और दैत्य जल रहे थे, मर गए होते, पर भगवान शिव रक्षा किए। ऐसे शिव जी के समान कौन दयालु है, क्यों नहीं भजन करते हैं? तो भगवान शिव के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप यह है कि किसी विशिष्ट जीव को कभी कभी उस पद पर स्थिर किया जाता है भगवान के द्वारा, और कभी कभी इस प्रकार का योग्य जीव नहीं मिलता है तो स्वयं भगवान ही सदा शिव के रूप में उस पद पर रहते हैं। तो उस समय वो साक्षात कृष्ण है, भगवान है। ये जो स्तुति की गई है यहां पर, सदा शिव की स्तुति की गई है, इसलिए इसमें सिद्धांत विरोध नहीं देखना चाहिए। एक प्रकार से ये सारी स्तुति भगवान विष्णु की है जो देवता लोग कर रहे हैं। तो भीता प्रजा दुद्रुवुर सहेश्वरा, सहेश्वरा दुद्रुव, ईश्वर के साथ भागे, भगवान भी भागे, भागो रे भागो जान बचाने के लिए। तो सबको अब भगवान की उस लीला पर मुग्धता छा गई, ये ध्यान ही नहीं रहा कि यही सबके रक्षक हैं, इनकी ही शरण में गिर गए, ध्यान नहीं रहा, क्योंकि वो स्वयं ही भाग रहे थे शिव जी को जस देने के लिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से पूछा गया कि जब चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए भक्ति का प्रचार करने के लिए, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो वे भारत को छोड़कर अमेरिका क्यों नहीं आए प्रचार करने के लिए? तो प्रभुपाद जी कहते, हमको जस देने के लिए नहीं आए, हमारा नाम बढ़ाना था इसलिए नहीं आए। सीधा उत्तर दिए, भक्तिवेदांत स्वामी का नाम बढ़ाना था कि इन्होंने प्रचार किया पाश्चात्य देश तारिणे, तो इसलिए वो नहीं आए। भगवान जो सबके रक्षक हैं, यहां तक कि शिव जी के रक्षक हैं, ब्रह्मा के रक्षक हैं, वो भगवान क्यों नहीं बचाए वहां पर विश्व? क्योंकि वो अपने भक्त भगवान शिव को जस देना चाहते हैं, इसलिए नहीं बचाए। तो वे लीला कर रहे थे इसीलिए किसी को ध्यान नहीं रहा, सब उनके साथ भागे, सह ईश्वरा, ईश्वर के साथ भागे, भगवान के साथ भागे, अथवा अपने अपने दल के मालिक के साथ भागे। अपना अपना दल था, उसमें हेड लोग थे, वे भी भागे तो साधारण गए तो देवता की क्या बात। दुद्रुव तेज गति से भागे, हे अंग, बड़े स्नेह से महाराज परीक्षित को संबोधित कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, प्रिय परीक्षित, इस प्रकार का संकट आ जाता है, क्या किया जाए, तो लोग भागे। विलोक्यतम देववरम त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतो मुनीनाम आसीनमद्रौ अपवर्ग हेतु तपो जुषाणम स्तुत भी प्रणेमहु। तीनों लोक के जीवों के उद्भव के लिए, प्रगति के लिए, ये विकास के लिए भगवान शिव दिव्या सह देवी पार्वती जी के साथ अद्रौ आसीनम, अद्री पर कैलाश पर्वत पर थे, देवी जी के साथ रहने पर भी भगवान शिव मुनीनाम अभिमतम अपवर्ग हेतु तेषामेव अपवर्गाय तपः जुषाणम्। भगवान शिव पार्वती जी के साथ थे, रहते हैं पर्वत पर ऐसा होने पर भी वे तपस्या में ही रहते हैं, भोगों में नहीं रहते हैं। भगवान शिव में एक बार काम वासना पैदा करने के लिए कामदेव को भेजा गया, तो कामदेव आया वसंत ऋतु के साथ, अप्सराओं के साथ और अपनी पत्नी रति के साथ, कई सेना साज के साथ आया शिव जी में काम वासना पैदा करने के लिए। तो वे लोग सब नाच गान कर रहे थे कैलाश में, नाच गान, स्त्रियां नूपुर बजा रही थी और क्या क्या, और मंद शीतल समीर चल रहा था, बसंत ऋतु आ गया, मूर्तिमान भगवान शिव को डिस्टर्ब करने के लिए कि ये कामुक हो जाएं, और तपस्या में थे। तो भगवान ने देखा कि ये सब हमारे आश्रम में आकर ये क्या उपद्रव कर रहे हैं, और उन्हें क्रोध आया, क्रोध से तीसरा नेत्र खुल गया, जबकि वो प्रलय काल में खुलता है, विश्व को भस्म करने के लिए, प्रलय करने के लिए, लेकिन वो क्रोध आया और खोल दिए तीसरा नेत्र, वहीं पर कामदेव जल कर राख हो गया। क्या काम वासना पैदा करेगी? अब तो रति हाय हाय करने लगी, उसकी पत्नी हाय 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 हाय। तब भगवान शिव ने वर दिया उसको कि बिना शरीर कहीं सबके हृदय में व्यापक रहेगा, से प्रभाव रहेगा। तो जिसके तीसरे नेत्र खुलने से कामदेव जल कर राख हो गया, उसमें क्या काम वासना हो सकती है? पार्वती जी साथ में रहती हैं, लेकिन भगवान शिव में कभी भी काम विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए यहां कहा गया कि देव्या सह अद्रव आसीनु, देवी पार्वती जी के साथ वे कैलाश में रहते हैं, तथापि श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं इस पर भी वे मुनीनाम अभिमतम तपोजुषाणम, मुनियों के को जो प्रिय है, भगवान के विरक्त भक्तों को जो प्रिय है, उसी तप में जुड़े रहते हैं। अपवर्ग के लिए अर्थात मुनियों के आध्यात्मिक प्रगति के लिए भगवान शिव तप करते रहते हैं। यदि भगवान शिव ही भोग में पड़ जाए तो इनके देखा देखे तो दुनिया चौपट हो जाएगी, इसलिए वो दिखाते हैं भक्ति करके रात दिन लगे रहते हैं। अपवर्ग का अर्थ है पवर्ग से ऊपर, त्रिवर्ग में नहीं रहते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए या भगवान के धाम की प्राप्ति के लिए जो उचित तप है, भोगों से दूर रहना, भगवान की भक्ति में रहना, इसी में वे जुषाणम युक्त रहते हैं भगवान से। तो ऐसे प्रभु के पास ये सब प्रजापति लोग पहुंचे, मतलब मुनियों में, देवताओं में और असुरों में जो सबसे श्रेष्ठ लोग हैं, वे लोग वहां पहुंच पाए, भागे, और लोग रह गए पर्वत के किनारे इधर उधर। तो वहां तक विष नहीं जा सकता था, लोग जीवित बचे थे, लेकिन भगवान शिव के पास खास हेड लोग गए, जो प्रधान लोग थे वे गए। सबके लिए वहां जाने की छूट भी नहीं थी। तो पहुंचे प्रजापतय उच्च, तो वहां जाकर के कैलाश में भगवान शिव की स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रणाम किए, प्रणाम करके इसके बाद स्तुति करने लगे। ये स्तुति के श्लोक यहां बोले गए थे, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिन शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद्विषात। हे देव देव, देव का अर्थ है पूज्य, और देव देव का अर्थ है देवा नाम अपि पूज्य, पूज्य आप देवताओं के भी आराध्य हैं। देवता और सबके आराध्य हैं, मनुष्यों के लिए देवता आराध्य हैं, पर देवताओं के भी देवता भगवान शिव। देव देव, देवा नाम देव, महादेव आप महादेव हैं, सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, सबसे श्रेष्ठ पूज्य व्यक्ति हैं, और भूतात्मन आप समस्त जीवों की आत्मा हैं, सबके जन्मदाता हैं, और इसके साथ ही साथ समस्त जीवों को पालने वाले हैं। भूतभावन, भूतभावन का अर्थ होता है जो जीवों का पालन करे। जीवों को उत्पन्न किया है भगवान ने, भगवान शिव ने, और उनका भी पालन करते हैं। भूतात्मन भूत भावना, भूत मतलब जीव। कभी कभी भगवान शिव को पशुपति कहते हैं। जो नेपाल में मंदिर है उसमें जो डीटी है भगवान शिव का, उसको पशुपतिनाथ कहते हैं। तो पशुपति का अर्थ होता है, ऐसे तो सुनने में लगता है कि कोई गाय भैंस रखे होंगे, उनका पालन करते होंगे, इसलिए पशुपति कहते हैं। लेकिन पशु का अर्थ है जीव, पति मतलब पालन करने वाला, समस्त जीवों का वो पालन करते हैं, इसलिए उनको पशुपति कहते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण भी पशुपति हैं, तो वे सचमुच पशु का पालन करते हैं, गाय चराते हैं। एक बार भागवत में उनके लिए पशुपति रव गाय चारयन ऐसा आया है कि पशुपति वेणु गीत में श्री कृष्ण पशुओं का पालन करते हुए वृंदावन में घूमते रहते। भूतात्मन का अर्थ भूतों के कारण अर्थात उनको जन्म देने वाले जीवों को जन्म देने वाले जहां भी तीनों लोकों में जीवों को जन्म हुआ है देह मिला है ये सब भगवान शिव ने दिया है। ध्यान रखना चाहिए कि यह स्तुति भगवान विष्णु और भगवान शिव जी में ऐक करके कही जा रही है और भूत भावन जीवों को पोषने वाले इस संसार में अनेक वस्तु की जरूरत है जीवों को पोषने के लिए। जैसे सबसे पहले तो आधार चाहिए जहां वो रहे, तो भगवान ने पृथ्वी बनाया है जिस पर जीव रह सके। यदि अधिष्ठान आधार नहीं बनाया होता तो हम लोग कहां रहते। यदि आज भगवान का नोटिस आए कि हे मनुष्यों तुम लोग बहुत दिन रहे इस पृथ्वी पर, इसका रॉयल्टी दो अथवा खाली करो, तुम जाओ जहां जाना हो, तब क्या करेंगे। एक दिन नोटिस आवे कम से कम भारतवर्ष में लोगों को कि पृथ्वी खाली करो, बहुत दिन रह लिए, हम कोई चार्ज नहीं करते हैं, बस सीधा खाली करो, क्या कहेंगे लोग, सरकार क्या करेगी। भाई पृथ्वी खाली करना है, कहां जाएंगे। भगवान मान लो कहते हैं कि जहां इच्छा हो जाओ, कोई सोचे ठीक है तब हम नौका बनाएंगे और समुद्र में रहना चालू करेंगे, तो भगवान कहो जल भी मेरा है समुद्र भी मेरा है, वहां भी नहीं रह सकते, आकाश में भी नहीं रह सकते, तुम लोग अपने लिए बनाओ समझते। और खाने के लिए वे कह दे कि पृथ्वी से जो भी वस्तु उत्पन्न हो रही है सब मेरा है, पेट्रोल मेरा रखा हुआ है, तुम लोग गाड़ी नहीं चला सकते हो, अपना पेट्रोल पैदा करो, हमारा पेट्रोल मत लो, हमारा कोई खनिज द्रव्य नहीं, हमारे पृथ्वी से उत्पन्न कोई फल नहीं, कुछ नहीं, क्या करेगा मनुष्य, मर जाएगा कि नहीं। तो वास्तव में विश्व के समस्त जीवों का पालन भगवान कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। कभी कभी दिखाते हैं ये मत्स्य पालन विभाग एक सरकार में मछली का पालन करता हूं खाने के लिए। पालन क्या होता है मछली का बीज डाल डाल करके उनको बड़ा बड़ा करके इसके बाद खाने के लिए, वो भी सब भगवान का पानी है, भगवान कहीं भोजन करके वो मछली आदि जीवित रहते हैं। कोई एक व्यक्ति का भी पालन नहीं कर सकता है, सारा संसार मिल करके एक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है यदि भगवान कह दे कि मेरी वस्तु मत छुओ। तो उनको भूत भावन कहते हैं, जीव भावन समस्त जीवों का पालन करने वाले। किस प्रकार भगवान विविध वस्तुओं से समस्त जीवों का पालन कर रहे हैं इस पर विचार करना चाहिए। त्राहि नः शरणापन्नान, हम आपकी शरण में आए हैं, शरणागत हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। देवता और दानव भगवान शिव से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके मांग रहे हैं हमारी रक्षा कीजिए। त्राहि नः अस्मंत्राही, हम आपके शरण में आए हैं, किस चीज से रक्षा की जाए। त्रैलोक के दहनाद विषाद, तीनों लोकों को ये जलाने वाला महाविष है, इससे हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। त्वमेक सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्ष है, समस्त जीवों के बंधन और मुक्ति के सुख और दुख को देने वाले आप ही हैं, आप ही ईश्वर हैं। इसीलिए जो विद्वान व्यक्ति हैं, समझदार हैं, जिनको थोड़ा विवेक है, वे लोग आपकी पूजा करते हैं। तम त्वम अर्चन्ति कुशला, कुशल लोग विवेकी लोग आपकी अर्चना करते हैं, क्योंकि प्रपन्नार्थी हरम गुरुम, आप ही शरणागत के दुख का नाश करते हैं और वास्तविक हितैषी हितोपदेश का हित करने वाले आप ही हैं, आप ही वास्तविक गुरु हैं। यह गुरु का अर्थ है माता पिता और उपदेश देने वाला, तो आप ही वास्तविक उपदेश दाता हैं, हित करने में समर्थ हैं, हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। और भगवान शिव की अन्य भी स्तुति की है, जिसको मैं यहां हिंदी में पढ़ देना चाहता हूं। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की, ध्यान से सुनिएगा, सुइएगा मत। देवताओं के आराध्य महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं, इसलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। प्रभो, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा विष्णु शिव आदि नाम धारण कर लेते। बहुत सावधानी से सुनना चाहिए, ये भगवान विष्णु की ही स्तुति है। आप स्वयं प्रकाश हैं, इसका कारण है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि सत अथवा असत चराचर प्राणी हैं, उनको जीवन दान देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत रूप में भी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं, इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत स्वतः सिद्ध ज्ञान हैं। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं, इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत स्वतः सिद्ध ज्ञान हैं। आप ही जगत के आदि कारण महत्त्व और त्रिविध अहंकार हैं, एवं आप ही प्राण, इंद्रिय, पंच महाभूत तथा शब्दादि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप स्वयं ही प्राणियों की बुद्धि वृद्धि और ह्रास करने वाले काल हैं, उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं, एवं सत्य और मधुर वाणी हैं। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही अ उ म इन तीन अक्षरों से युक्त प्रणव हैं अथवा त्रिगुणात्मिका प्रकृति हैं, ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं। सर्व वेद स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोक के अभिदय करने वाले शंकर, यह पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। यह काल आपकी गति है, दिशाएं कान हैं और वरुण रसनेन्द्रिय हैं। आकाश नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र है और जल वीर्य है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन है और प्रभु स्वर्ग आपका सिर है। वेद स्वरूप भगवान समुद्र आपकी कोख है, पर्वत हड्डियां हैं, सब प्रकार की औषधियां और घास आपके रोम हैं, गायत्री आदि छंद आपकी सातों धातुएं हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। स्वामी, सद्यो जातादि पांच उपनिषद हूं आपके तत्पुरुष से अघोर, सद्योजात, वामदेव और ईशान नामक पांच मुख हैं। उन्हीं के पदच्छेद से 38 कलात्मक मंत्र निकले हैं। आप जब समस्त प्रपंच से उपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव। वास्तव में वही स्वयं प्रकाश है, परमार्थ तत्व है। अधर्म की दंभ, लोभ आदि तरंगों में आपकी छाया है, जिससे विविध प्रकार की सृष्टि होती है। सत्व, रज और तम आपके तीन नेत्र हैं। प्रभो, गायत्री आदि छंद रूप सनातन वेद ही आपका विचार है, क्योंकि आप ही सांख्य आदि समस्त शास्त्रों के रूप में स्थित हैं और उनके कर्ता भी हैं। भगवान आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है। उसमें न तो रजोगुण, तमोगुण एवं सत्वगुण है, न किसी प्रकार का भेदभाव ही। आपके उस स्वरूप को सारे लोकपाल, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। आपने कामदेव, दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकूट विष, जिसको आप अभी अभी अवश्य पी जाएंगे, और अनेक जीवद्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है। परंतु यह कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ यह विष आपके ही नेत्र से निकली हुई आग की चिंगारी एवं लपट से जलकर भस्म हो जाता है, और आप इस प्रकार ध्यानमग्न रहते हैं कि आपको इसका पता भी नहीं चलता। जीवन मुक्त आत्माराम पुरुष अपने हृदय में आपके जुगल चरणों का ध्यान करते रहते हैं तथा आप स्वयं भी निरंतर ज्ञान और तपस्या में लीन रहते हैं। फिर भी सती के साथ रहते देखकर, जो आपको आसक्त एवं शमशानवासी होने के कारण उग्र अथवा निष्ठुर बतलाते हैं, वे मूर्ख आपकी लीलाओं का रहस्य भला क्या जाने। उनका वैसा कहना निर्लज्जता से भरा हुआ है। इस कार्य और कारणात्मक जगत से परे माया है और माया से भी अत्यंत परे आप हैं। इसलिए प्रभो, आपके अनंत स्वरूप का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने से सहसा ब्रह्मा आदि भी करने में सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते, फिर स्तुति तो कर ही कैसे सकते हैं। ऐसी अवस्था में उनके पुत्रों के पुत्र हम लोग कहे ही क्या सकते हैं। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान किया। हम लोग तो केवल आपके इसी लीला बिहारी रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। महेश्वर, यदि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, यद्यपि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप में भी रहते हैं। तो यहां तक यह स्तुति है। बीच में खंडित हो रहा था, इसलिए मैं इसको पढ़ा। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भीषपीडितः सर्वभूत सुहृदेव इदमाह सतीं प्रियां। इस प्रकार जब देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की, तो उनके इस दुख को देखकर भगवान शिव का हृदय द्रवित हो गया। कृपया भीषपीडितः, कृपा उत्पन्न हुई अपने हृदय में उनकी दुर्दशा देख करके, और ये बहुत दुखित हुए। दुखित का मतलब उनके दुख को दूर करने की भावना से हृदय द्रवित हो गया, क्योंकि सर्वभूत सुहृद देव, भगवान शिव सभी जीवों के स्वाभाविक हितैषी, सबके प्रति उनकी दया है। सर्वभूत, पशु पक्षी कीट पतंग देवता मनु सबके प्रति उनका स्नेह है, सबके पूज्य हैं। इदम महासतीम प्रियाम, तो देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव अपनी प्रिया सती से इस प्रकार बोले। भगवान शिव अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, अहो बत भवानी तत् प्रजानाम पश्य वैशसं। हे भवानी, देखो, पश्य देखो, प्रजा के दुख को देखो। वैशसं मतलब दुखम, प्रजा के दुख पर जरा विचार करो। तो माता पार्वती ने कहा कि ये दुख कैसे हो गया, तो वे कहते हैं क्षीरोद मथनोद भूता कालकूटाद उपस्थित। ये लोग क्षीर समुद्र मथ रहे थे, और क्षीर समुद्र के मंथन से कालकूट नामक महाविष उत्पन्न हुआ है, और उसी विष के कारण यह दुख उपस्थित हुआ। भगवान शिव ये सोचे कि यदि मैं विष पीऊंगा तो मेरे प्रभाव पर विचार न करने के कारण, ध्यान न देने के कारण, हो सकता है कि पार्वती हमें मना करे, सती मना करे, ये घबरा जाए। इसलिए भगवान शिव पार्वती जी से अनुज्ञा ले रहे हैं, बता रहे हैं कि हमको कहेगी ठीक है पीजिए। और वैसे भगवान शिव जीवन में बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, महाविष को पीने का, तो पत्नी से बिना सलाह लिए कैसे पिएंगे। ये आवश्यक है, पूछ करके काम किया जाए। तो भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि देखो प्रजा पर विपत्ति आई हुई है, क्षीर समुद्र के मथने से कालकूट जहर उत्पन्न हुआ है और उससे ये लोग घबराए हुए हैं। तो आशम प्राण परिप्सु नाम विधेयम अभयम हिमे, प्राण परिप्सु नाम ये प्राण रक्षण की इच्छा कर रहे हैं, प्राण बचाने के लिए व्याकुल हैं, इनके प्राणों पर विपत्ति आई है, तो मैं इनको अभय दान दूंगा, मतलब मैं इनकी रक्षा करूंगा। अपनी पत्नी से भगवान शिव इस प्रकार बात कर रहे हैं कि मैं इनकी रक्षा करूंगा। अब तक ये नहीं कहे कि किस तरह रक्षा करूंगा, कहे कि मैं विधेयम अभयम ही में एतावान ही प्रभु अर्थ हो जब दीन परिपालनम, जो व्यक्ति प्रभु है, प्रभु का अर्थ होता है समर्थ, जो समर्थ व्यक्ति है उसका एतावान ही अर्थ है, यही कार्य होना चाहिए, उसका एकमात्र यही कार्य है कि वह दीन का पालन करे, दीनहीन व्यक्ति का पालन करे, दुखी व्यक्ति का दुख दूर करे। तो जो समर्थ व्यक्ति का यही एकमात्र कार्य है, समर्थ का अर्थ है जिसे मान लीजिए किसी के पास धन है, ज्ञान है, बल है, बुद्धि है, तो अपने बल से, अपनी बुद्धि से, ज्ञान से, धन से दुखी जीवों का दुख दूर करे, उनका पालन करे, यही काम है एकमात्र, अर्थ का अर्थ कार्यम, यही एकमात्र कार्य और कुछ नहीं। यदि समर्थ है तो चाहिए कि वो दीन दुखियों का पालन करे। अब दीन दुखियों में केवल मनुष्य का ही नहीं, पशु पक्षी भी प्रजा है, उनका भी पालन होना चाहिए। आधुनिक युग में मनुष्य समझते हैं कि केवल मनुष्य का पालन करो और बाकी सारे पशुओं को काट कर खा जाओ, ये राक्षस इस तरह के विचार रखते। पशु भी दुखी हैं, उनको दुख होता है, इसका उनको ध्यान ही नहीं है। पशु मनुष्य की आजीविका के रूप में भगवान ने पैदा किया, ये हेल्प करते हैं मनुष्य को, घोड़े बैल इन ये अपनी एनर्जी द्वारा बोझ खींचते हैं, सवारी की जाती है, गाय भैंस ये सब दूध देते हैं, देती हैं, कितना बड़ा साथ दे रहे हैं मनुष्य का। मनुष्य के शरीर से ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं निकलता है जिसको मनुष्य समाज में खाया जाए पिया जाए, लेकिन पशुओं से दूध निकलता है, दही बनता है, घी निकलता है। लेकिन ये पशु बहुत दुखी हैं, इनको चारा तक नहीं मिल रहा है, इस पर मनुष्य समाज का कोई ध्यान नहीं। एक तो पशु कम कर दिए गए, बहुत कम हो गए हैं पशुओं की हत्या के कारण, फिर भी पशुओं का चारा ये मनुष्य समाज नहीं जुटा पा रहा है। हार्वेस्टर से गेहूं काट करके भूसा जला देना, थोड़ा भी विचार नहीं है कि आखिर वो भी किसी के लिए भोजन भगवान ने पैदा किया, उनके लिए भोजन पर ध्यान नहीं। मनुष्य इतना स्वार्थी और इतना मूर्ख हो गया है कि उसकी व्यापक दृष्टि जाती ही नहीं है, वह हमारा काम चलना चाहिए, तो क्या काम चलेगा। वृक्षों को और पशुओं को भगवान ने इसीलिए बनाया है कि ये मनुष्यों को हेल्प करेंगे जीने में। वृक्षों से फल निकलता है, लकड़ी आती है, कई कई तरह से उपकार कर रहे हैं, और मनुष्य समाज अपने दुख का रास्ता साफ कर रहा है। वृक्षों को काटते जाना, पशुओं की हत्या करना, उनका उचित पालन नहीं करना। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि एतावान ही प्रभोर अर्थो जद दीन परिपालनम, दुखी जीवों का दुख दूर करना, उनका पालन करना, यही है समर्थ पुरुषों का कार्य, तो मैं इनकी रक्षा करूंगा। प्राणै स्वहि प्राणिनः पान्ति साधव क्षण भंगुरै, हे प्रिय जो साधु जन हैं, सज्जन हैं, सत्पुरुष हैं, वे लोग अपने क्षणभंगुर इस देह के द्वारा भी दूसरे प्राणियों की रक्षा करते हैं, पांति पालन करते हैं। अपना देह भी चला गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं संत, वो देह की परवाह नहीं करते हैं। प्राणै स्वैहि प्राणिनः पान्ति, स्वैहि प्राणै अपने प्राणों से अर्थात अपने देह हंसते हैं से इंद्रियों से इसको भी बलिदान दे करके लोग दूसरों का पालन करते हैं। साधव क्षण भंगुर, आखिर देह है क्षण भंगुर है, कुछ ही समय तक रहता है और दिन पर दिन क्षीण होता जाता है, इसको भंगुर कहते, क्षीण होता जाता है। तो जो सज्जन है वो अपने देह को महत्व न देकर अपने देह के द्वारा दूसरे प्राणियों की रक्षा करते हैं। बद्ध बैरेश भूतेश मोहिते सात्माया, इस संसार में जीव एक दूसरे से बैर बांधे हुए हैं। बद्ध बैरेश दुखी हैं, एक तो बैर करके दुखी हैं, अपने देह की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरे के देह को मारते हैं, हिंसा का भाव उनमें भरा रहता है जीवों में इस संसार में। परंतु फिर भी संत पुरुष सज्जन पुरुष ऐसे जीवों पर दया करते हैं। ये सब जीव भगवान की माया से मोहित हैं या अपने अज्ञान से भ्रम में पड़े हुए हैं, तो जो सज्जन हैं वे दुखी जीवों का पालन करते हैं। और पुंसः कृपेतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि, भगवान शिव बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति दया करता है दूसरे प्राणियों पर तो क्या फायदा होता है। फायदा ये होता है पुंसः कृपेतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि, जब कोई व्यक्ति कृपा करता है दूसरे जीवों पर तो सबके हृदय में वास करने वाले भगवान हरि श्री कृष्ण प्रियते प्रसन्न होते हैं। यही जीव को सबसे बड़ा फायदा होता है, उसके उस एक्शन से उसके उस उपकार से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है, उसे सब कुछ मिलता है। और जब भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं तो मैं भी प्रसन्न हो जाता हूं, भगवान शिव कह रहे हैं। तस्मा प्रीते हरौ भगवती प्रिये हम सचराचर, जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं किसी व्यक्ति पर दयालु पुरुष पर तो मैं भी चर और अचर समस्त प्राणियों के साथ उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूं। स्पष्ट भगवान शिव बोल रहे हैं कि जो दया करता है दीनहीन प्राणियों के प्रति तो भगवान प्रसन्न होते हैं और मैं भी प्रसन्न हो जाता हूं और सारे जीव चर और अचर उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। यह है लाभ, हमेशा दया का भाव रखना चाहिए प्राणियों के प्रति, मनुष्य हो या पशु हो पक्षी हो सबके प्रति दया का भाव। तो जो व्यक्ति दया हमेशा करता रहता है दयालु रहता है तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। बताइए ऐसा व्यक्ति कैसे गरीब हो सकता है जिस पर भगवान प्रसन्न है प्लस शिव जी भी प्रसन्न है और अन्य देवता आदि सब प्रसन्न है। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सब लोग प्रसन्न होते हैं, जापर कृपा राम कह होई तापर कृपा कराए सब कोई, जिस पर भगवान कृपा करते हैं तो सब कृपा करते हैं। स्पष्ट भगवान शिव कह रहे हैं कि प्रिय हम, मैं भी प्रसन्न हो जाता हूं, सचराचर चर और अचर सब भी प्राणियों के साथ मैं इस पर कृपा करता हूं। तो यही है जीवन का लाभ प्रिय, कि दुखी जीवों का दुख दूर किया जाए। तस्माद इदम गरम भुंजे प्रजानाम स्वस्थ अस्थ में, अतः मैं इस विष को पीऊंगा मेरे द्वारा प्रजा का कल्याण हो, मैं चाहता हूं इनका हित करना, ये जीवित रहे सुख से जिए, इस तरह से रो रहे हैं कराह रहे हैं मरने के भय से इस तरह से घबरा रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि ये दुखी रहे। अतः तस्माद इदम गरम भुंजे, इस गर को इस विष को मैं खाऊंगा। भुंज कभी कभी तरल पदार्थ के लिए भी खाना शब्द आता है, बंगाली लोग पानी पीना नहीं कहते हैं, जल खावो तो जल को भी खाना कहते हैं। तो संस्कृत में ही भगवान शिव बोल रहे हैं कि मैं इस विष को खाऊंगा पीऊंगा ऐसा नहीं कह रहे, मैं खाऊंगा। तो यह भी शब्द चलता है, इससे सिद्ध हुआ कि बंगाल में जो प्रसिद्ध है वो भी संस्कृत से ही निकला है। तस्माद इदम गरम भुंजे, भुंजे का अर्थ भोजन करूंगा, भोगूंगा, मैं इस गरल को खाऊंगा पीऊंगा, ये मतलब हुआ। प्रजानम स्वस्ति अस्तु, प्रजा की शोभन सत्ता हो, ये सुख से रहें जिए। यदि मैं विष पी जाता हूं, पूरे समुद्र में फैला हुआ, दुनिया में फैला हुआ विष, तो ये सब सुख से जिएंगे, सुखी रहेंगे, हंसेंगे, खाएंगे, पिएंगे, यही मेरा सुख है। कितना उदार विचार है भगवान शिव का। वो कहते तस्माद एकदम गरम भुंजे, गरम मन गरल विष तो पीऊंगा खाऊंगा। क्यों खाएंगे, किसकी और उपाय से बुझा दीजिए। जैसे फायर विभाग वाले कहीं लगी हुई आग को पानी द्वारा बुझा देते, तो भगवान शिव कोई दूसरा उपाय करके बुझा देते, क्यों वो खुद खाएंगे, इतना खतरा क्यों ले रहे हैं। तो भगवान शिव ने सोचा कि अगर मैं विष को इधर उधर फेंकवाता हूं, कहीं भी रखता हूं, ताकि सब जगह जीव भरे पड़े हैं दुनिया में, सब जगह तो मर जाएंगे, इसीलिए मैं अपने अंदर ही ले लेता हूं। लेकिन अंदर भी तो उनके अनंत कोटि जीव हैं, उनके उदर में भगवान शिव, इसीलिए उन्होंने विष को भीतर नहीं जाने दिया, कंठ में ही पचा लिया, ऐसा वर्ण ये आ रहा है। तो इतना कह करके भगवान शिव इस प्रकार अपनी पत्नी से मंत्रणा ले करके पूछा, ठीक है ना। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, आप जो भी करना चाहें। वो तो जानती थी अपने पति का प्रभाव, इसलिए उसने मना नहीं किया, ना बाबू ऐसा मत कीजिए, मैं विधवा हो जाऊंगी, हाय हाय, ऐसा उसने नहीं कहा। वो अपने पति के प्रभाव को जानती थी खूब अच्छी तरह से, विष इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आपका विचार उत्तम है, आखिर वो भी जगत जननी है, मां है, भगवान शिव की पत्नी है, तो उसकी भी तो समस्त जीवों के प्रति दया है, हृदय में दया है, इसलिए उन्होंने कहा, स्वीकृति दे दिया, ठीक है आप पीजिए। क्योंकि प्रभाव अज्ञा अन्वमोदत, भगवान शिव के प्रभाव को जानती थी, इसलिए घबराई नहीं, आनंद से स्वीकृति दे दिया। तो भगवान शिव किस तरह विष पी रहे हैं, उनका प्रकार देखिए। एक तो संपूर्ण विश्व में वो विष फैल चुका है, समुद्र व्यापी विष, पूरे समुद्र में व्यापक हो चुका है, और उसको भगवान शिव ने ततः करतली कृत्य व्यापी हला हलम विषम, उस विश्व व्यापी विष को वो अपने करतल पर एक हाथ के तल पर अटवा लिए। देखिए ईश्वर का कार्य, कितना लीटर विष फैला है, कोई गिनती नहीं है, सब जगह फैला है, और जल के रूप में ही फैल रहा था, और जिधर फैलता था तो उधर आग लगने लगती थी। ऐसे उस विष को, मतलब ये समझिए कि समुद्र में जितना जल है, दूध है, पानी है, उतना वो था मात्रा में, लेकिन उसको अपनी हथेली पर अटवा लिए। कभी कभी मनुष्यों के दिमाग में बात नहीं आएगी, ये कैसे हो सकता है, हम लोगों के लिए नहीं हो सकता है, भगवान के लिए क्या अशक्य है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं गंगा जी के तट पर सुखताल में, यहां से बहुत दूर नहीं है, तो वहां बोल रहे ऋषियों के सभा में बोल रहे हैं, ततः करतली कृत्य, करतली कृत्य का मतलब है करतल परिमित मात्रम कृत्वा, हाथ में अंट सके इतना छोटा बना लिए समुद्र को, उस व्यापक विष को। तो उसके लिए अब क्या आश्चर्य होगा अगर हाथ में अटवा कर फिर पी जाए, ये कौन सी आश्चर्य की बात है। पहले उतने विशाल भंडार को अपने हाथ में अटवा लेना, यही बहुत बड़ा मुश्किल है, असंभव कार्य है, लेकिन भगवान शिव में शक्ति है, वो ले लिए हाथ पर, और सती के सामने, पार्वती जी के सामने पीने लगे, और सब लोग देख रहे थे। अभक्षण महादेव कृपया भूत भावना, जीवों का पालन करने में तत्पर भगवान शिव उस विष को पी गए। इतने बड़े विष के स्टॉक कोई हथेली पर अटवा कर फिर पिए, तो भगवान ने सोचा कि हमारे भीतर भी तो अनंत कोटि जीव हैं, वो मर जाएंगे विष से, तो उनमें ये सामर्थ्य है, वो भीतर पानी नहीं जाने दिए, वो जल का दोष जाने नहीं दिए विष को, वो कंठ में रोक लिए। हम लोगों में शक्ति नहीं, हम लोग तो दो चार बूंद पानी भी नहीं रोक पाएंगे, एक बूंद भी नहीं रोक पाएंगे, या तो पी जाएंगे अथवा उल्टी करेंगे। लेकिन भगवान शिव की शक्ति विष बमन नहीं किए और भीतर भी नहीं जाने दिए, कंठ में पचा लिए। और इतना भयावह विष था, उसने प्रभाव भगवान शिव पर भी नहीं छोड़ा, शिव पर भी छोड़ा, प्रभाव अपना असर दिखाया कि उनके गोरे शरीर को, जो चंद्रमा की तरह गोरे हैं शिव जी, उनके कंठ को नीला कर दिया। इसका मतलब जला दिया, कंठ नीला हो गया, गोरा शरीर नीला हो गया, इसलिए भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ। भगवान शिव का एक नाम है नीलकंठ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्यापि दर्शयामास स्वबीर्जम जलकल्मषः जच्चकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम। इतना प्रभावशाली विष है, इतना प्रभावशाली कि इतने समर्थ भगवान शिव के भी गले को नीला कर दिया। लेकिन परम दयालु भगवान शिव के लिए वह विष या गला का नीला होना विभूषणम, एक अलंकार हो गया, वो बहुत अच्छा लगता है भगवान शिव का। जहां भी शिव जी जाते हैं तो लोग देखते हैं उनके गले को नीला हुआ है, गोरे शरीर में, तो सब जगह चर्चा करते हैं। एक दिन समस्त विश्व पर बहुत बड़ी विपत्ति आई थी, विशेषकर देवता और दानवों पर विष के कारण, उस विष को इन्होंने पी लिया था, उसी विष के कारण एक गला नीला हो गया, तो सब जगह प्रशंसा होती है। भगवान शिव जहां भी जाते हैं उनकी प्रशंसा होती है और बहुत अच्छा लगता है। एक तो जस मिलता है और दूसरे उस गोरे शरीर में नीला कंठ भी उनको बहुत अच्छा लगता है, दूसरे लोग कभी दोष नहीं देते। तो इस प्रकार तत्व साधुर विभूषण भगवान शिव के लिए वह आभूषण बन गया। गला नीला दिखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे कार्य के कारण हुआ है। एक बार एक लड़का, हमारे गांव के निकट की घटना है, जंगल में भैंस चरा रहा था, गाय भैंस चरा रहा था, तो गया कुछ घास काटने के लिए एक जगह। घास काट रहा था तब तक वहीं पर एक बाघ सोया था किसी पशु को खा करके, ताजा खाया था और सोया था, वो देखा नहीं लड़का। तो बाघ गरजा तुरंत और आया, उस पर चढ़ बैठा, पहले उसने मारा ऐसे थप्पड़ बाघ ने, तो आज भी उसके कान के पास दाग है उस लड़के, जो बाघ ने अपना पंजा मारा, और मारा तो वो फिर गिर गया लड़का, गिर गया तो बाघ उस पर सो गया। वो कहता था कि रजाई की तरह उसका पेट कोमल लग रहा था हमको, लेकिन हमारा तो होश उड़ गया कि अब तो जीवन खोना है। पर बाघ खाया पिया था, बस कुछ देर रुका और इसके बाद पता नहीं क्या उसके मन में आया, उठ करके दहाड़ता हुआ चला गया। तो वो निशान आज भी है। इस तरह से एक जसस्वी निशान होता है कि बाघ ने मारा तो ये तो साधारण सी बात है, लेकिन गला नीला हुआ है भगवान शिव का, जगत का इतना बड़ा उपकार कर रहे, सबकी जान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने कंठ को नीला बना लिया, जला दिया बीच। इस पर एक कवि ने कहा है कि इसी तरह से सज्जन पुरुष को चाहिए कि जब वो किसी की निंदा सुने तो सज्जन पुरुष ऐसा करता है कि किसी की अगर निंदा सुने तो उसे मन में चिंतन नहीं करना चाहिए और वर्णन भी जीभ से नहीं करना चाहिए। वर्णन करने का मतलब है कि बाहर कर रहा है, और चिंतन करने का मतलब है भीतर ले जा रहा है। भगवान शिव जैसे विष को बीच में ही पचा दिए कंठ में, वैसे किसी की निंदा को सुनकर के न तो मन में सोचना चाहिए और न बोलना चाहिए, कंठ में बीच में ही पचा लेना चाहिए, न बोले न सोचे, क्योंकि दुनिया में जहां जाएंगे निंदा तो मिलेगी ही किसी न किसी की। तो सज्जन पुरुष को चाहिए कि वो वैसे उस निंदा को पचा ले जैसे भगवान शिव विष को पचा लिए, पेट में नहीं जाने दिए और बाहर उल्टी नहीं किए। तो किसी की निंदा को बोलना ये उल्टी करने जैसा है, सुने तो उसको दोहराने लगे ऐसा है ये है वो है, और मन में भी नहीं सोचना चाहिए। मन में सोचना और पेट में अंदर ले जाना है। तो इस प्रकार समस्त जगत के हित के लिए भगवान शिव विष पान किए। तस्यापि दर्शयामास स्वबीर्जम जलकल्मष जच्चकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषण। इस पर श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान शिव की बहुत प्रशंसा करते हैं, कहते हैं तप्यन्ते लोक पापेन साधो प्रायसो जना परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः। ये तो भगवान शिव की बात है, तो बहुत बड़े हैं, सामान्य सज्जन भी लोक तापेन प्रायः तप्यन्ते, लोगों का कष्ट देख करके वे कष्ट में रहते हैं, अर्थात मन में दया उत्पन्न होती रहती है, दूसरे के ताप से वे तप्त रहते हैं, दूसरे को जब देखते हैं कि दुखी है तो उससे वो दुखी हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। ये तो भगवान हैं, इनके लिए तो कहना ही क्या। तप्यन्ते लोक तापेन साधुओं प्रायसोजन है, लोक ताप से लोगों के दुख को देख करके प्रायः सज्जन पुरुष तप्त रहते हैं, और दूसरे के दुख को दूर करने की चेष्टा करना यही है अखिल आत्मा परम पुरुष भगवान विष्णु की आराधना। भगवान को यदि कोई खुश करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह दुखी जीवों का दुख दूर करे, अपने आप भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान अखिल आत्मा है, अखिल आत्मा का अर्थ सभी प्राणियों के हृदय में वे हैं, अतः सभी प्राणियों में भगवान को देख करके उस प्राणी के दुख को दूर करने का उपाय करना चाहिए, इसे भगवान प्रसन्न होते हैं। अखिल आत्मा सी राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोर जो पानी, ये सत्य है कि भगवान सभी प्राणियों के भीतर हैं और बिना प्राण प्रतिष्ठा के हैं, डायरेक्ट हैं। मूर्ति वगैरह में तो जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, भाव होता है, तब भगवान आते हैं, और वो भी आए कि नहीं आए कुछ पता नहीं चलता है, पर जीवों के हृदय में तो भगवान साक्षात हैं, अपने आप अपनी विधि से ही विराजमान है। अतः भगवान की सबसे बड़ी पूजा यही है कि दीन दुखी जीवों का दुख दूर किया जाए, उनको सहायता किया जाए, उनके दुख में दुखी हुआ जाए। दुख में दुखी होने का मतलब है उनका दुख मिटाना। प्रायशः शब्द क्यों दिया जा रहा है, भगवान शिव के लिए भी प्रायः दूसरे के दुख से दुखी रहते हैं शिव जी या दूसरे साधु, प्रायः कार से 99% टाइम लगभग दुखी रहते, कभी कभी नहीं दुखी रहते। ये भगवान शिव के लिए कहा गया कि ये जब प्रलय करते हैं तो सारे जीव जलते हैं, आह ओह करते हैं, पर उस समय दुखी नहीं होते हैं, इसलिए प्रायः शब्द का प्रयोग किया गया। उस समय दूसरे के दुख से इनको कोई दुख नहीं होता, ये भगवान का आदेश है, प्रलय करना है तो प्रलय करते हैं अपनी ड्यूटी मान करके, इसलिए प्रायशः शब्द का प्रयोग किया गया। हमेशा दुखी रहते हैं, 1% समय दुखी नहीं रहते, तो प्रलय जब होगा तब होगा, तब तक तो दुखी रहते ही हैं। तो परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः, यही है अखिलात्मा पुरुष की परम आराधना, सर्वश्रेष्ठ आराधना, यही है दुखी जीवों का दुख दूर करना। वैसे संस्कृत के श्लोक में कहा गया है कि जो महात्मा होते हैं, संत होते हैं, उनका हृदय बिल्कुल मृदुल होता है। कितने मृदुल होता है, मक्खन से भी अधिक मृदुल होता है। पूछ रहा है कोई व्यक्ति, मृदुलम किम वस्तु है सखे नवनीता दपि सज्जनस्य हृत, नवनीत से भी अधिक कोमल मृदुल वस्तु कौन है इस संसार में? तो उत्तर दिया जा रहा है सज्जनस्य हृत, सज्जन का हृदय, सज्जन व्यक्ति का जो हृदय होता है वो मक्खन से भी, नवनीत से भी कोमल होता है, क्योंकि तदिदम द्रवते स्वतापनात्। मक्खन तो अपने ताप से तप्त हो जाता, द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, लेकिन पर तापा द्रवते सताम मना, दूसरों के दुख से दुखी होता, दूसरों का दुख देखकर, ताप देख करके सज्जनों का मन द्रवित हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से कहा है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीन पे कह ही न जाना। कवियों ने, विद्वानों ने ऐसा कहा है कि संत का हृदय नवनीत जैसा होता है, कोमल। पर तुलसीदास जी कहते लेकिन ये गलत कहा लोगों ने, कहने आया नहीं, कहा कबीन पे कह ही न जाना। कहा विद्वानों ने ऐसी बात लेकिन कहने नहीं आया, गलत कह दिया, क्योंकि निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रव ही संत सुखनीता। नवनीत तो अपने दुख से जब उस पर आंच लगती है तो पिघलता है, अपना दुख से, अपने आंच से पिघलता है, अपने पर आंच लगने से। लेकिन संत वे होते हैं जो दूसरे के ताप को देह करके पिघल जाते हैं, इसलिए नवनीत से भी अधिक कोमल हृदय होता है सज्जन पुरुषों का। इस सामान्य सज्जन की बात की जा रही है तो सज्जन शिरोमणि या सज्जनों के परम पूज्य भगवान शिव के विषय में तो कहना ही क्या है, वो इतने कोमल हैं कि सबके जीवन की रक्षा के लिए विष को पी गए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर एक कमेंट दे रहे हैं कि लोगों के ताप से, जीवों के ताप से प्रायः सज्जन तप्त रहते हैं, और वास्तव में दुखी जीवों का दुख मिटाना, द्रवित हो जाना, यही है परम पुरुष सर्वात्मा भगवान की आराधना, यही सबसे बड़ी पूजा है। और भी पूजा है भगवान की, लेकिन सबसे अधिक पूजा यही है कि दुखी जीवों का दुख दूर किया जाए। और निशम्य कर्म तत्सम भोर देव देवस्य मीडुषा प्रजा दक्षायणी ब्रह्मा वैकुंठश्च स संसिरे। भगवान शिव के इस कर्म को सुन करके और देख करके सब लोग प्रशंसा किए, जब वो विष पिए तो ये खबर संपूर्ण विश्व में फैल गया तुरंत। इसको सुन करके कुछ लोग देख करके भगवान शिव की बहुत प्रशंसा की। भगवान शिव महादानी हैं, वो तुरंत पिघल जाते हैं, देवताओं के देवता हैं। तो प्रजा, वहां जितने भी देवता और दानव जुटे हुए थे, वे सब लगे प्रशंसा करने भगवान शिव की, और जहां तक खबर गई सब जगह प्रशंसा हो रही थी। दक्षायणी और दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भी बहुत प्रशंसा की, बहुत अच्छा किए आप, बहुत अच्छा किए। उनके इस दयालु स्वभाव को देख करके सब धन्यवाद दे रहे थे। और ब्रह्मा जी प्रशंसा करने लगे, वैकुंठश्च सशंसरे, और स्वयं भगवान अजित भी बहुत प्रशंसा किए, भगवान विष्णु बहुत प्रशंसा कर रहे थे। धन्य है, संपूर्ण इतिहास में ऐसा कार्य कोई नहीं किया जो दूसरों के हित के लिए अपने हृदय में, अपने शरीर में विष को रख ले। बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे थे, सशंसरे में सब प्रशंसा कर रहे थे। प्रजा दक्षायणी ब्रह्मा वैकुंठ और चकार से अनुक्त समुच्चय, और अन्य सब लोग भी शिव जी की प्रशंसा कर रहे थे। प्रस्कन्नम पिबत पाणे जत किंचित जगृहु स्मते वृश्चिका ही विशो शब्दो दंद सुकश्च। ये फले भगवान शिव एक लीला किए, जब वो करतल में अटवा लिए विष को और पिए तो उन्होंने जान बुझ करके दो चार बूंद गिरा दिया उसे विष के प्रभाव को दिखाने के लिए। तो जब पी रहे थे ऐसा नहीं था कि सावधानी से उनकी अंगुलियों के संधि से वो बह करके चला गया। आई इतना भगवान शिव के हाथ से नहीं गिर सकता है, कोई बच्चा नहीं है, लेकिन उन्हें गिराया प्रस्कन्नम, वो विष थोड़ा गिरा तो उसको पिया कुछ लोग कुछ जीवों ने वृश्चिक अहि बिच्छू सब पिए उसको चक है और सर्प विषो शब्द और विष लताएं विष के जो पौधे होते हैं बहुत विषैले जिनको पीने से आदमी मर जाए और दंग सुकष्ट और बड़े बड़े सर्प आदि अथवा कुत्ते सियार और मच्छर विषैले मच्छर। दिल्ली में कौन मच्छर नाम कौन मच्छर बहुत खतरनाक पाया जाता है? डेंगू डेंगू। तो ये सब पिए हैं उस हलाहल को। एक बार एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि जब उस विष से सारी दुनिया जल रही थी, देवता दानव सब हाहाकार कर रहे थे, तो ये बिच्छू सांप ये सब मरे क्यों नहीं उस ज्वाला से? ये लोग और विषैले हो गए, इनकी शक्ति बढ़ गई, ये मरे क्यों नहीं? तो हमारे पास तो कोई उत्तर नहीं था, ये भगवान की इच्छा है और क्या कहा जा सकता था। बड़े बड़े देवता जल रहे थे, मरने की हालत में थे और उसी विष को डायरेक्ट पिया मच्छरों ने, सियार ने, कुत्ता ने या सांप बिच्छू सब पिया और इनकी शक्ति और बढ़ गई। क्या कहा जा सकता है? भगवान की इच्छा के अलावा और क्या इसका उत्तर है? वे नहीं मरे। इसके द्वारा यही वर्णन किया जा रहा है कि विष तीव्रता, विष कितना तीव्र था कि थोड़ा थोड़ा ग्रहण करने वाले फिर इतने विषैले हो गए, तो अपने आप वो स्टॉक में कितना भारी भयावह वस्तु था। तो भगवान शिव इस प्रकार विष को पिए। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी विष पीने के बाद फिर से समुद्र मंथन की कथा चालू कर रहे हैं। फिर सब जूटे आए स्पॉट पर उत्साह के साथ और भगवान कच्छप तो पीठ पर पर्वत को लिए ही थे, वो डूबा नहीं था, छोड़ छाड़ करके चले गए थे, सब तब आ गया था जैसे टीका पड़ गया था। आए फिर से चालू किए, बहुत भारी खतरा से बच गए। और भगवान ने तो पहले ही देवताओं को कहा था कि विष उत्पन्न होगा, डरना मत, इसको शिव जी पी जाएंगे, घबराना मत। तो अब श्रील सुखदेव गोस्वामी नए सिरे से समुद्र मंथन की कथा चालू कर रहे हैं। कौन कौन वस्तु उत्पन्न हुई? श्री सुखवाच पीते गरे वृषांकेण प्रीतास्ते मर्दानवः। वृषांकेण वृष पर चलने वाले, बैल पर चलने वाले भगवान शिव के द्वारा जब विष पी लिया गया तो प्रीता अमर दानवा, देवता और दानव सब बहुत प्रसन्न हुए, विष की विपत्ति चली गई। कभी कभी जब कोई व्यक्ति भगवान पर रंज होता है, जैसे नारद जी एक बार रंज हुए थे, तो भगवान पर दोष देते हैं कि समुद्र मंथन हो रहा था तो शिव जी को बुद्धू बना करके, पागल बना करके उनको विष पिला दिए तुमने, और अपनी लक्ष्मी लिया और कौस्तुभ मणि लिए, देखो यही व्यवहार है। आप रमा मणिचार स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। भगवान उसमें क्या किए थे? क्या भगवान शिव जी को बुद्धू बना करके पिलाए थे जहर? तो इस तरह का विचार कभी कभी तार्किकों के मन में होता है, नास्तिकों के। यदि भगवान है तो देखो अपने कौस्तुभ लिया, लक्ष्मी को लिया और शिव जी को वही विष भेज दिया पीने के लिए। ये जो कुछ भी हो, भगवान शिव का एक कार्य बहुत महान हुआ। तो जब विष पी गए तो प्रीता अमर दानवा, पीते गरे वृषांक, उधर शिव जी पी गए विष को, तब ये लोग बहुत प्रसन्न हुए। और ममंथु तरसा सिंधुम हविर्धानी तत्व, तो बहुत तेज गति से बड़े उत्साह से फिर मथना चालू किए। तो विष के बाद संख्या में दूसरी बात अब कामधेनु उत्पन्न हुई, समुद्र की लहरों से कामधेनु आई, गाय उत्पन्न हुई जो समस्त कामनाओं को पूरा करती। असुर लोग गाय पसंद नहीं किए, क्योंकि असुर लोग तो ऐसे ही गाय के बैरी होते हैं, गाय को काटते हैं खाते हैं, उनको पसंद नहीं पड़ी। और इसके बाद तब देवताओं की बारी आई, देवता लोग तो चुप थे। भगवान ने पहले ही शिक्षा दिया था कि लोभ कार्यन वो जातु रोष कामस्तु वस्तु सु, किसी भी वस्तु में लोभ मत करना, कोई दूसरा ले ले तो क्रोध मत करना, और किसी भी वस्तु की कामना ही मत करना, बस मत। तो ये लोग रुके थे, देवता भी कुछ नहीं बोलते थे। तो भगवान ने कहा, ऐसी बात है कि आप लोगों के जीवन की पहली कमाई है, विष को तो कमाई नहीं मानेंगे, तो विपत्ति थी, ये कमाई है, तो इसे साधुओं को ऋषियों को दे दिया जाए, अंगों निकाल दिया जाए। ऐसे मतलब पहला फल उत्पन्न हुआ है तो ये साधु ब्राह्मण को दे दिया जाए। तो सब लोग कहा ठीक है, असुरों ने भी कहा ठीक है ठीक है ठीक है, क्या हम लोग दान देने में थोड़े कम है, हम लोग भी हमारी कमाई है तो हम भी गोदान कर रहे हैं, तो गोदान कर दिया गया। ऋषि लोग मथने में नहीं थे, लेकिन उन लोगों को दिया गया इस तरह से पहला फल। हम लोगों ने देखा है गांव में जब खलिहान में ढेरी लगती है अनाज की, तो उसमें से कुछ सूप या कुछ अनाज निकाल करके ब्राह्मणों को दे दिया जाता है, जिंगल नियम, थोड़ा दे या जो भी दे निकाला जाता है। तो समुद्र मंथन की ये पहली कमाई ऋषियों को दी गई। तो तामग्निहोत्रिम ऋषयो जगृहुर ब्रह्मवादिनः, वेद के अनुसार जीवन चलाने वाले, वेद पढ़ने वाले, पुराण आदि पढ़ने वाले ऋषि लोग उस अग्निहोत्री को लिए। अग्निहोत्र, होत्र का अर्थ होता है घी, और होत्री माने घी देने वाली, जो घी उत्पन्न करते हैं, दूध देते हैं, दूध से घी बनता है, तो इस घी से देवताओं को पुष्ट किया जाता है। तो ऋषियों ने यज्ञ करने के लिए, शुद्ध हवि के लिए उस गाय को ले लिया, शुद्ध देसी घी, और वो भी काऊ घी, इसके लिए ऋषियों ने लिया। इससे यह भी शिक्षा मिलती है कि ऋषियों को गाय की सेवा करनी चाहिए, गोदान किया गया। ततः उच्च श्रवा नाम हयो भूत चंद्र पांडुरः तस्मिन बलि स्पृहां चक्रे नेन्द्र ईश्वर शिक्षया। इसके बाद उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला तरंगों पर। एक बार कोई चीज उत्पन्न होती थी तो बंटवारा हो जाता था, इसके बाद फिर चालू होता था, रोक करके मंथन और बंटवारा होता था, भगवान वहां पर थे। सत्ता तो जो उच्च श्रवा घोड़ा निकला, चंद्रमा की तरह श्वेत वर्ण का घोड़ा, बहुत सुंदर, तस्मिन बलि स्पृहां चक्र, वहां बलि खड़े थे, असुरों के सरदार वही थे, तो उन्होंने कहा अहम गृहणामि, ये मैं लूंगा। और उस दल के नेता थे इंद्र, तो न इंद्र ईश्वर शिक्षा, पहले ही भगवान ने उनको शिक्षा दिया था कि तुम मत स्पृहा करना, इसलिए इंद्र भगवान चुपचाप खड़े थे। और भगवान ने भी कहा था कि कोई दूसरा ले ले तो क्रोध भी मत करना है, अथवा इस समय भी संकेत किए होंगे अपने मटकी से कि तुम मत, भगवान सिखाए होंगे अपने भक्त को कि लेने दो चुपचाप रहो। उस समय तो शिक्षा दिए ही थे, इस समय भी कहे नहीं। तो इंद्र नहीं, स्पृहा ही नहीं की, इच्छा ही नहीं की इंद्र भगवान की शिक्षा के अनुसार, और बलि महाराज उस घोड़े को ले लिए। और भगवान ने इसलिए भी कहा था कि अब इसके बाद इससे भी अच्छी वस्तु उत्पन्न होगी, तो आखिर टर्म आएगा तब मिलेगा ना, तब तक तो ऐरावत हाथी निकला जिसके चार दांत ऐसे थे जैसे कैलाश पर्वत के शिखर उजले। भगवान शिव के पर्वत की महिमा को भी खंडित करने वाला था, तत ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गत दंतश्चतुर्भिः श्वेताद्रे हरन भगवतो महि। भगवान शिव का पर्वत है, उसका नाम है कैलाश। तो कैलाश है, स्वर्णमय पर्वत नहीं है, रजत का पर्वत है, चांदी का पर्वत है, तो उजला है। तो ऐरावत का रंग भी चंद्रमा की तरह ही था, उजला, काला नहीं है, वो श्वेत हाथी बिल्कुल चंद्रमा की तरह चमकता है। और उसके दांत ऐसे लगते हैं जैसे कैलाश पर्वत के चार शिखर। तो उस पर भी असुरों ने कहा बस ये हम लेंगे, तो भगवान ने रोका, कहा नहीं, ईमानदारी से बंटवारा होना चाहिए, अभी आपने लिया ना, अब तो टर्म देवताओं का है। तो भगवान अब वहां थे इसलिए वो लोग क्या कर सकते थे, ठीक है ठीक है। तो देवराज इंद्र को वहां थी मिला ऐरावत। बहुत देर के बाद कोई चीज उत्पन्न होती थी, उसके बाद फिर मंथन चालू हुआ देवराज इंद्र के हिस्से में, वो कहीं बांध दिया गया हाथी या खड़ा कर दिया गया, अपना काम फिर चालू है। अथवा वो भेज दिए होंगे अपने शिविर में जहां वो लोग रुके थे, सब फिर चालू हुआ मंथन। कौस्तुभाख्यम अभुद्रत्नम पद्मरागो महोदधे तस्मिन हरिस्पृहां चक्रे वक्षोलंकरणे महल। इसके बाद कौस्तुभ मणि निकला जगमग करता हुआ दिशाओं, पीले वर्ण का मणि है, भगवान पीला मणि धारण करते हैं क्योंकि वो स्वयं सांवले हैं, सांवले शरीर पर पीत मणि धारण करते हैं कौस्तुभ। ये पद्मराग मणि है बहुमूल्य, उसकी कीमत दुनिया बेच करके भी नहीं चुकाई जा सकती है, बहुत बहुमूल्य। तो तस्मिन हरि स्पृहां चक्र, भगवान उसमें स्पृहा किए। अभी दोनों पक्ष के लोग ले ही लिए थे, पहला फल दिया गया ऋषियों को, जब बंटवारा हुआ तो भगवान ने स्पृहा किया, अच्छा भाई मेरा भी कुछ होता है कि नहीं, अरे सारा काम तो भगवान ही किए थे, पर्वत धारण किए हैं, चला भी रहे हैं, मंद्राचल भी लाए थे सब, लेकिन भगवान ने कहा आप लोग एक बार सोच लीजिए, देवताओं को डांट करके कहे कि मेरा कुछ होता है कि नहीं इसमें। अच्छा तो आप चाहते हैं, हाँ मैं चाहता हूं, भगवान ने खुलकर कहा, ठीक है ठीक है। तो वहां कोई विवाद नहीं हुआ, भगवान कौस्तुभ मणि ले लिए जो भगवान के वक्षस्थल का श्रृंगार है, उसको हमेशा धारण किए रहते हैं कौस्तुभ मणि, तो ये भगवान ने लिया। ततो भवत पारिजात, इसके बाद पारिजात कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। अब टर्म था असुरों का, लेकिन इन लोगों ने स्वयं नहीं लिया, उन्होंने सोचा कि ये वृक्ष रुख कौन लेने जाए, और तो कल्प वृक्ष वृक्ष के रूप में है लेकिन वो तो महादेवता से भी बढ़ करके है, वो सबकी कामना को पूरी करता है, उसके छाया में आ जाए कोई तो उसका दुख दूर हो जाता है। वो लोग नहीं जानते थे इसकी महिमा को, इसलिए टर्म तो आया था दैत्यों का, लेकिन जब भगवान ने इशारा किया तब नहीं, हम नहीं लेंगे, सीधा कहा दैत्यों ने। दैत्य तो वृक्ष को काटते हैं ना, खत्म करते हैं, कहां से वृक्ष लेंगे, ये समझिए जो भी वृक्षों को काटे वो राक्षस ही है, दैत्य ही है बिना मतलब के। अरे वृक्ष सूख जाता है तो अपने आप वो काम में आता है, लेकिन हरे वृक्ष को काट देना पक्षियों के लिए आश्रय खत्म हो जाता है, मनुष्य और पशु के लिए छाया खत्म हो जाती है, वर्षा भी कम होती है वृक्षों के बिना। तो ये असुर लोग वृक्ष की महिमा नहीं जानते, और वो भी कल्प वृक्ष को देखे तो रिजेक्ट कर दिए, लेकिन टर्म उनका था। तो भगवान ने कहा ठीक है, ये सुरलोक विभूषणम, अब ये स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाएगा, स्वर्ग में जाएगा पारिजात, सबसे उत्कृष्ट कोटि का ये वृक्ष है, मन में संकल्प जो किया जाता है उसको भी ये पूरा कर देता है, फिर विधिवत कोई सेवा करे तब तो कहना ही क्या। तो कैसे ये अर्थियों की कामना को पूरा करता है, जैसे आप सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं कि जैसे आप मांगने वाले की इच्छा को पूरा कर देते हैं, उसी तरह कल्प वृक्ष पूरा करता है। कल्प वृक्ष की तुलना महाराज परीक्षित से किए। ततो भवत पारिजात सुरलोक विभूषणम पुरयत्तर्थिनो योर्थै शश्वत भुवि जथा भवान। कथा कहते समय महाराज परीक्षित को इतना मान दे रहे हैं। वास्तव में महाराज परीक्षित ऐसे थे, वे मांगने वाले की इच्छा को पूरा करते थे। इसी तरह कल्प वृक्ष कोई भी अभिलाषा कोई करे तो उस अभिलाषा की पूर्ति कर देता है। तो इस वृक्ष को देवताओं ने लिया और स्वर्ग लोक में ये रोपा गया। केवल एक ही वृक्ष नहीं था, ये एक जाति के लिए एक वचन का प्रयोग किया गया, पूरा स्वर्ग पारिजात वृक्ष से भर गया। ततश्चाप सरसो जाता निष्कंठ सुवास। इसके बाद अप्सराएं उत्पन्न हुई, समुद्र की लहरों पर अपने आप आ जाते थे मंथन करने पर। निष्कंठ, गले में बहुत सुंदर आभूषण था, हंसली थे और बिल्कुल नवीन जवानी थे, और सुवास सह और बहुत सुंदर वस्त्र पहने थी अप्सराएं, साड़ी पहनती। स्वर्ग में सभी देवता लोग, देवताओं की स्त्रियां साड़ी पहनती हैं और देवता धोती पहनते हैं। देवताओं के यहां एक भी आदमी फुल पैंट नहीं पहनता है। हाँ, वहां ये इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो सब अंग्रेज पहन करके आए, उसको धीरे धीरे लोग सीख लिए। देवताओं के यहां एक भी एक भी देवता ये वस्त्र नहीं पहनता, और मनुष्यों के समाज में तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है कौन क्या पहनेगा क्या करेगा, आधा शरीर उघार रखेगा कि पूरा नग्न घूमेगा, कोई यहां स्टैंडर्ड है न कोई वास्तव में मर्यादा है धारणा है। कोई भी कटिंग कुछ भी पहन लो, कोई भी अंग नग्न रखो, कम वस्त्र पहनो, विदेशी चाल है वास्तव में जो भारतवर्ष में भी आ गई है। विदेशों में पुरुष तो फुल पैंट पहनते हैं, पूरा शरीर झांक करके रहते हैं, और स्त्रियां चड्डी पहनकर घूमती हैं एकदम खुलम खुला, शायद ही कोई स्त्री फुल पैंट पहनी हो, ये दिखा जाता है। और ये भूत प्रेत का काम है बिना वस्त्र के रहना। भूतों को कोई साइज या कपड़ा नहीं मिलता है। अब के लोग अब भूत प्रेत बनना चाहते हैं, जितना शरीर को खुला रखो खुला रखो। हम लोगों को अपनी संस्कृति को कायम रखना चाहिए, नहीं तो कहां संसार जाएगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मर्यादा रहनी चाहिए पहनाव में, खाने में, पीने में। तो सुवास सह अप्सराओं के, देव स्त्रियों के वस्त्र का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। सुवास सह बहुत सुंदर साड़ियां पहने थी। रमणीय स्वर्गिणा अम्बल को गति लीला व लोक नहीं। तो जब स्त्रियां उत्पन्न हुई तो असुरों ने कहा हमारा टर्म है, भगवान ने कहा कि नहीं आपका टर्म नहीं है, आपका टर्म दिया गया था आपने लिया नहीं, इसलिए आप इस समय नहीं ले सकते, टर्म देवताओं का है। तो सुरचुप हो गए, ये देवताओं को दी गई स्त्रियां। इसलिए श्रील सुखदेव को सभी कहते हैं स्वर्गिणाम रमणीय, स्वर्ग में देवताओं को रमाने वाली स्त्रियां अपनी गति से, अपनी चाल से, हास से, अपनी तिरछी चितवन से या अपने सौंदर्य से देवताओं को सुख देती हैं, तो उन्हें देवताओं को दिया गया, ये अर्थ है। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा। इसके बाद समुद्र मंथन चालू हुआ और दूध के समुद्र के लहरों पर श्री जी प्रकट हुई, सारे दसों दिशाओं को जगमग करती हुई। वास्तव में भगवान नारायण की वो नित्य प्रेयसी है, नित्य प्रिया है, लेकिन इस समुद्र मंथन में प्रकट होकर के सबको छोड़ करके सब में दोष बता करके और वे भगवान को वरण करेंगी, यह शिक्षा दे रही है कि इसी प्रकार किसी भी जीव को चाहिए कि वह भगवान को वरण करे, और किसी का आश्रय लेकर के वो क्या करेगा। तो श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई, श्री रमा भगवत पराय, भगवत परायण है, सदा भगवान की शरण में रहते हैं। लक्ष्मी जी कहते हैं कि नारायणे तो एक मना बसाने, मैं नारायण के हृदय पर एक मन से रहती हूं। वो चंचला लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी के दो स्वरूप है, एक तो संपद रूपा लक्ष्मी, समस्त धन की स्वामिनी, अधिकारिणी, अधिष्ठात्री देवी, और दूसरा उनका रूप है भगवत प्रेयसी, भगवान की प्रिया पत्नी। तो यहां पर दोनों रूप का वर्णन किया जा रहा है कि श्री जी प्रकट हुई, श्री कहते हैं समस्त सौभाग्य सुख धन संपत्ति की अधिष्ठात्री स्वामिनी। इस संसार में कोई व्यक्ति कुछ भी पहन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये सब श्री जी की कृपा है, वो दे रही है वास्तव में। चाहे वो अन्न के रूप में हो, दूध के रूप में हो, या कपड़ा के रूप में हो, जूता के रूप में हो, घर के रूप में हो, जो भी परवरिश हो रही है सारे जीवों की, वो सब जगत जननी श्री जी दे रही, लक्ष्मी जी दे रही, समस्त संपत्ति के अधिष्ठात्री हैं। तो मूर्तिमती संपत्ति प्रकट हुई है। यहां पर मुख्य आशय यही है कि संपद रूपा लक्ष्मी जी प्रकट हुई है, जो सबका तिरस्कार करके छोड़ करके और भगवान को वरण की है। तो नित्य प्रेयसी हैं, भगवान के नित्य प्रियतम है, फिर भी यह लीला लक्ष्मी जी ने किया, ये हम सबको शिक्षा देने के लिए। तो मैं कल यह वर्णन करूंगा किस प्रकार श्री जी का अभिषेक हुआ। ये ध्यान रखना चाहिए कि श्री जी जब प्रकट हुई लक्ष्मी जी, तो वे वहीं पर देवताओं के दृष्टि में मां जैसे लग रहे थे, क्योंकि जगत जननी है, भगवान की प्रेयसी है, और जो असुर थे वे कामुक भाव रखे थे, उन्हें वो जगत जननी के रूप में दिखाई नहीं दे रहे थे, पर जो भक्त हैं वो तो उनकी सेवा में लग गए। भगवान इंद्र उनके लिए आसन लाए, कोई वरुण देवता ये लाए वो लाए, सेवा करने लगे, अपने मां की सेवा कर रहे। लक्ष्मी जी की कृपा से ही सारा जगत खाता है, पीता है, सुखी रहता है, और ये भगवान की प्रेयसी हैं। तो भगवान की प्रेयसी के रूप में सभी देवता देख रहे थे कि ये हमारी मां है, बड़े स्नेह से। तो अपने मां की, लक्ष्मी जी की लोग सेवा करने लगे। कौन देवता क्या सेवा कर रहे हैं इसका वर्णन कल आएगा, और इसके बाद वर माला लेकर के अपना वर चुनने के लिए लक्ष्मी जी घूमने लगी। वहां पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ, अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे, गान हो रहा था, जय जयकार हो रहा था। तो लक्ष्मी जी किस प्रकार भगवान विष्णु को वरण कर रही हैं, इसका वर्णन कल आएगा। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु।